ವ್ಯಾಸಂ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ಕಲ್ಕಿ ಕಥಾ ಸೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಜೀ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಏಕ್ ಲಾಂಛನ್ ಲಗ್ತಾ ಥಾ ವೊ ತೋ ಶಾಯದ್ ಮಿಟ್ ಗಯಾ ಹೋಗಾ. ಲಾಂಛನ್ ಯೇ ಲಗಾತೆ ಥೇ ಕಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಜೀ ನೆ ಕುತ್ತಾ ಕಾ ಮಾಂಸ ಖಾಯಾ ಥಾ. ಹಮನೆ ತೋ ಖುದ್ ನೆ ಸುನಾ ಲೋಗೋ ಸೆ ಐಸಾ ಹೈ ಐಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರೋ ಮೇ ಆತಾ ಹೈ. ಕಲ್ ಆಪ್ನೆ ಜಬ್ ಸುನಾ ತೋ ಆಪ್ಕೆ ಭೀ ಜಚ್ ಗಯಾ ಹೋಗಾ ಕಿ ಮಾಂಸ ಖಾಯೆ ನಹೀ, ಭಗವಾನ್ ನೆ ಬಚಾ ಲಿಯಾ, ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತಾವೋ ನೆ ಬಚಾ ಲಿಯಾ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಆಜ್ಞಾ ಸೆ. ಅಬ ದೂಸರಿ ಬಾತ್ ಚಲತಿ ಹೈ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ್ ನೆ ಪೂಛಾ ಕಿ ಮಹಾರಾಜ್, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಜೀ ಕಿ ಯೇ ಬಾತ್ ಸುನ್ಕರ್ ಮೇರಾ ಚಿತ್ತ ಘಬರಾ ಗಯಾ. ಯದಿ ಘೋರಂ ಸಮುದ್ದಿಷ್ಟಂ ಅಶ್ರದ್ಧೇಯಂ ಇವಾನೃತಂ ಅಸ್ತಿ ಸ್ವಿದ್ ದಸ್ಯು ಮರ್ಯಾದಾ ಯಾಮಹಂ ಪರಿವರ್ಜಯೆ. ಮಹಾಪುರುಷ ಭೀ ಸಂಕಟ ಪಡನೆ ಪರ್ ಜಬ್ ಐಸಿ ಐಸಿ ಲೀಲಾ ಕರ್ ಲೇತೆ ಹೈ ತಬ್ ಹಮ್ ಚೋರ್ ಲುಟೇರೆ ಡಾಕೂ ಔರ್ ನೀಚ ಪ್ರಾಣಿಯೋ ಕೋ ಕೈಸೆ ಕ್ಯಾ ಸಮಝಾ ಸಕ್ತೆ ಹೈ. ಸಮಯ ಆನೆ ಪರ್ ಮಹಾಪುರುಷೋ ಕಾ ಹೃದಯ ಭೀ ಡಾಮಾಡೋಲ್ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ. ಏಕ್ ಮಾಂಸ ಕೆ ಟುಕಡೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಜೀ ಮಹಾರಾಜ್ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಇಚ್ಛುಕ್ ನಹಿ ಹುಯೆ. ತಬ್ ಹಮಾರಾ ಧರ್ಮ ಕೆ ಅಂದರ್ ಪ್ರವೇಶ ಕರ್ನಾ ಯೇ ಉದ್ಯಮ ನಿಷ್ಫಲ ಹೋತಾ ಲಗ್ತಾ ಹೈ. ಉದ್ಯಮಂ ನಾಧಿಗಚ್ಛಾಮಿ. ಪಿತಾಮಯ ಭೀಷ್ಮ ನೆ ಕಹಾ, ದೇಖೋ ಅಭಿ ಆಪ್ ಹಮ್ ಸಬ್ ಬ್ಯಾಠ ಕರ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಷಯ ಕಾ ಬಡೆ ವಿಸ್ತಾರ ಸೆ ವರ್ಣನ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೈ ಯೇ ವಿವಿಧ ಪುಷ್ಪೋ ಕೆ ಸಮಾನ ಹೈ ಔರ್ ಉಸ್ಮೇ ಜೋ ಮಹಾಪುರುಷೋ ಕಾ ಆಚರಣ ಹೋತಾ ಹೈ ವೋ ಶಹದ್ ಕೆ ಸಮಾನ ಹೋತಾ ಹೈ. ಶಹದ್ ಹೋತಾ ಹೈ ವೋ ಥೋಡಿ ಜಗಹ ಪರ್ ರಹತಾ ಹೈ, ಫೂಲ್ ಬಹುತ್ ಜಗಹ ಪರ್ ರಹತೆ ಹೈ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಜೀ ಕೆ ಇಸ್ ಆಚರಣ ಸೆ ಯೇ ವಿಚಾರ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಕಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಕೆ ಮನ್ ಮೇ ಜಬ್ ಭೂಖ ಕಿ ತೀವ್ರತಾ ಹೋತಿ ಹೈ ತಬ್ ವೋ ಪ್ರಾಯ ಧರ್ಮ ಸೆ ಚ್ಯುತ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ವಹಾಂ ದೃಢ ಭಾವನಾ ಪೈದಾ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಯೇ ಐಸಿ ಬಾತ್ ಹೈ. ಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾ ಸಮರ್ಥನ್ ನಹೀ ಹೈ ಕಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಜೀ ನೆ ಜೋ ಕಿಯಾ ವೋ ಅಚ್ಛಾ ಕಿಯಾ, ಸಮರ್ಥನ್ ಹೈ, ಸಮರ್ಥನ್ ಕಿ ದೃಷ್ಟಿ ಸೆ ನಹೀ ಹೈ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ರಾಜನ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೋ, ತ್ಯಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೋ ಔರ್ ಭಗವನ್ ನಿಷ್ಠ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೋ, ಉನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಕೋ ಸದಾ ಅಪ್ನೆ ಪಾಸ್ ರಖಕರ್ ಐಸೆ ಐಸೆ ಪ್ರಸಂಗೋ ಸೆ ಶಂಕಾಓ ಕಾ ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ ಲೇನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಅಂಗಮಾಮ್ ಅನ್ವೇಕ್ಷಸ್ವೆ. ಬಡೆ ಪುರುಷೋ ಕಿ ಲೀಲಾ ಕಾ ಜ್ಞಾನ ನಹಿ ಹೋತಾ. ಧ್ಯಾನ ಸೆ ಸುನ್ನಾ, ಏಕ್ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಇತ್ನಿ ಬಡಿಯಾ ಬಾತ್ ಕಹಿಯೆ ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮ ನೆ. ಹೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ್, ಕಭಿ ಕಭಿ ಬಡೆ ಪುರುಷೋ ಕಿ ವಿಪರೀತ ಕ್ರಿಯಾ ಲೋಕೋ ಕೋ ಸಮಝ ಮೇ ನಹಿ ಆತಿ. ವೋ ದೇಖತೆ ಹೈ ಕಿ ಐಸಿ ಲೀಲಾ ಕ್ಯೋ ಕಿ ಉನ್ಹೋನೆ. ದೇಖೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ್, ತುಮಾರೆ ಮನ ಮೇ ಮೇರೆ ಪ್ರತಿ ಭೀ ಏಕ್ ಶಂಕಾ ಹೈ ಕಿ ಪಿತಾಮಹ ಕಿ ಗೋದ ಮೇ ಹಮ್ ಖೇಲ್ತೆ ಥೇ. ಪಿತಾಮಹ ತೋ ಹಮಾರೆ ದಾದಾ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಯೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ್ ಕೆ ಪಕ್ಷ ಮೇ ಕ್ಯೋ ಖಡೆ ಹುಯೆ. ಯಾ ತೋ ಯೇ ಯುದ್ಧ ನಹಿ ಕರ್ತೆ ಕಿ ಭಾಯಿ 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 ಕಿ ಲಡಾಯಿ ಹೈ, ಹಮ್ ಬುಡ್ಡೆ ಆದ್ಮಿ ನಹಿ ಲಡೆಂಗೆ. या हम दोनों भाइयों को बैठा करके धमका करके आप लड़ाई को मिटा सकते थे, नहीं दुर्योधन तुम्हारा अन्याय है, नहीं युधिष्ठिर तुम्हारा अन्याय है, हमने जुआ खेला तो आप कान पकड़ करके मुझे दंडित कर सकते थे, लेकिन आप कौरवों के सामने युद्ध करने के लिए आए, हमारे सामने आपने बाण चलाए, शस्त्र चलाए, ये तो कोई भगवान की कृपा थी कि आपके शस्त्र जब चलते थे तो हम में से कोई आपके सामने खड़े नहीं होते थे, इसीलिए नहीं खड़े होते थे कि आपके शस्त्रों से हम पार तो पा सकेंगे नहीं, और लड़ने में आप हमारे से विपरीत खड़े हैं, तो आप हमारे से विपरीत क्यों हुए, ऐसा तुम्हारे मन में प्रश्न है लेकिन तुम संकोच से कह नहीं पाते हो। युधिष्ठिर अब मैं तो मरने वाला हूं, तुम्हारा और हमारा अब कितनी देर तक बातचीत होगी, संवाद होगा, इसलिए मैं मरते मरते तुमको एक रहस्य की बात सुना के जाता हूं, मेरे विषय के रहस्य की बात कि पितामह भीष्म क्यों लड़ा। युधिष्ठिर मैं इसलिए लड़ा, अंगमाम अन्ववीक्षस्व राजन्याय बुभूषते यथा प्रमुच्यते त्वन्यो यदर्थम न प्रमोदते। जब मुझे मालूम चला कि ये युद्ध अनिवार्य है तो मैंने विचार किया कि इन कौरवों की दुर्योधन आदि की मुक्ति संभव नहीं है, और जितने दुर्योधन के पक्ष लेने वाले राजा लोग हैं ये सब अन्याय करते हैं, तुम्हारी बातों में धर्म टपकता था, तुम्हारे आचरण कभी भी शास्त्र विपरीत नहीं थे, और सबसे बड़ा पक्ष तुम्हारे पास भगवान श्री कृष्ण का समर्थन है। मेरे मन में युधिष्ठिर कभी नहीं आई कि कौरव जीतेंगे, मैंने यही सोच करके कौरवों का साथ दिया कि इन पांडवों के साथ युद्ध में ये मारे जाएंगे तो उम्र भर तो इन्होंने पाप किया है, कम से कम मरते मरते इन लोगों का कल्याण हो जाए, ये कम से कम पाप के लोक में न जाए, नरक में न जाए, उन सबको नरक में बचाने के लिए मैंने युद्ध किया ताकि वो जो है युद्ध के अंदर उत्साहित होकर मर करके नरक से बचे। मा अंग माम अन्वीक्षस्व, मुझे देखो, राजन्याय बुभूषते, राज्य की प्राप्ति के लिए कैसे आपस में इनकी बुभुक्षा थी, और इन क्षत्रियों के साथ जो मैंने बर्ताव किया है, यथा प्रमुच्यते, जैसे उनका मोक्ष हो जाए, जैसे संसार बंधन से मुक्त हो जाए, इसलिए फिर मैंने ये युद्ध किया है। अब हमारे इस भाव को कौन दूसरा जानेगा भाई, दूसरे लोग तो यही कहेंगे कि पितामह भीष्म है, ये ऐसे ऐसे युद्ध किए और ऐसी बातें हुई। युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज इसका अर्थ तो ये हुआ कि बड़े पुरुष जो कुछ क्रिया में करते हैं वे और उनके भाव में बड़ा अंतर होता है, कि बिल्कुल ठीक है, विश्वामित्र जी का ये जो कुछ प्रदर्शन हुआ चंडाल के सामने, कुत्ते के जांग की मांस खाने की जो एक अपनी दृढ़ता से बात रखी, ये केवल ऊपर ऊपर की थी, भीतर में नहीं था, यदि विश्वामित्र जी का यही अभिप्रेत अर्थ होगा, भीतर से वो मांस की इच्छा हुई होती, तो वे देवताओं के पितरों के क्यों भोग लगाते? इतना समय उनको कैसे मिले? तो प्राणों के लिए व्याकुल हो रहे थे, चंडाल को कहने लगा मैं तो लेऊंगा एक क्षण भी, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती है। उन्होंने देवताओं को और पितरों को भोग क्यों लगाया? ये सब संसार को बताने के लिए कि आप लोगों को देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए, देवता लोग आपको प्रसन्न करेंगे, इसलिए किया है। और हे पितामह, आपने भी युद्ध के अंदर कौरवों का कल्याण करने के लिए युद्ध किया है, ये बात भी हमारी आस समझ में आई है। पितामह भीष्म ने कहा कि ये बातें संतों के पास बैठने से, सत्संग करने से समझ में आती है। युधिष्ठिर कहते हैं कि महाराज, कोई प्राणी हमारी शरण में आ जाए, उसका आचरण अच्छा नहीं, उसका व्यवहार अच्छा नहीं, वो हमारे साथ शत्रुता करता है, हमारी निंदा करता है, हमसे विपरीत चलता है, पर वो कहीं दुविधा में फंस गया और वो हमारी शरण में आ जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? पितामह भीष्म ने कहा, महान धर्मो महाराज शरणागत पालने। शरणागत की रक्षा में बड़ा भारी धर्म होता है युधिष्ठिर, चाहे वो तुम्हारा अपकारक हो, निंदक हो, चाहे तुम्हारा कितना ही बुरा करने वाला हो, यदि वो शरण में आ गया है तो उसको कभी नहीं त्यागना चाहिए। देखो, राजा शिबी हुए और भी बड़े बड़े राजा हुए, उनको मालूम है कि भाई यहां पर मेरे शरीर का त्याग हुआ, शरीर का त्याग कर दिया। राजा शिबी ने कबूतर के बराबर का मांस काट काट करके दे दिया। इन कथाओं को केवल सुनना नहीं चाहिए युधिष्ठिर, गंभीरता से इनके ऊपर विचार करना चाहिए। कैसी विचित्र बात है, आप तो राजाओं की बात करते हो, हम आपके सामने एक पक्षी का उदाहरण रखते हैं। कैसा विचित्र पक्षी था एक, श्रूयते च कपोतेन शत्रु शरणम आगते। एक कबूतर के शरण में उसका शत्रु आ गया, तब उसने पूजितश्च यथान्यायम्, उसने उसका पूजन किया। पूजितश्च यथान्यायम् स्वैश्च मांसैर् निमंत्रितः, अपने अपने मांस से उसको पवित्र किया। विराजम बैठो बैठ। युधिष्ठिर महाराज पूछने लगे, कोई बात नहीं, युधिष्ठिर महाराज पूछने लगे कि कबूतर का कौन शत्रु कैसे शरण में आया और उसको कैसे मांस खिलाया और उसको कौन सी गति मिली? महाराज वो जरा हमको सुनाओ। तो पितामह भीष्म कहने लगे कि देखो, हमने भी ये कथा हमारे गुरुदेव परशुराम जी से सुनी थी। परशुराम जी महाराज के पास एक बार मुचकुंद नाम का इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुआ प्रतापी सम्राट उनके पास आया और कहने लगा, हे ऋषिवर, आज मेरे सामने बड़ी समस्या आ गई। परशुराम जी ने कहा, कहो राजन, क्या समस्या है? कि महाराज, समस्या यह है कि मेरे पास मेरा एक शत्रु, मेरा निंदक, मेरा विरोधी वो शरण में आया है। वो कहता है मैं आपकी शरण में हूं, तो मुझे विश्वास नहीं है कि वो आगे जाकर मेरा अहित नहीं करेगा, तो मैं उसका क्या करूं, मैं उसको छोड़ दूं, त्याग दूं या उसको शरण में देऊं, कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं आपके पास पूछने के लिए आया हूं मुझे क्या करना चाहिए। तो परशुराम जी महाराज ने कहा राजन तुम हमारी बात सुनो, हम तुमको बिल्कुल सच्ची घटना सुनाते हैं। एक बार एक बहेलिया शिकारी जो साक्षात काल का रूप, काला कलूटा, दांत बाहर निकले हुए, बाल उसके फैले हुए, हाथ में धनुष बाण और कटारी लिया हुआ घोर जंगल में पहुंच गया। काकोल इव कृष्णांग, एकदम काले कबूतर, काले कौवे के समान उसका रंग, लंबी लंबी उसकी जांघें और एकदम छोटे छोटे पैर, बड़ा बदरूप विकराल, देखते ही आदमी को डर लगे ऐसा। अपने साथ में जाल भी ले गया, पास जाल पास ले गया, धनुष बाण भी रखा और कटार भी रखी। वो पशु पक्षियों को मार मार करके खाता था, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं था। भाई बंधुओं ने सब ने उसका त्याग कर दिया कि तू महान पापी, तेरा तो मुंह देखने से हमको पाप लेगा, हमारी जाति से निकल जा, हमारे गांव से निकल जा, सबसे उसको त्याग दिया। देखो राजन, जो आदमी पाप करता है वो पाप के पहले बार तो उसको घृणा होती है, लेकिन नित्य प्रति पाप करते 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 उसका अंतःकरण एकदम पापमय हो जाता है, फिर उसको घृणा नहीं होती। मनुष्य को चाहिए कि पापी आदमी का त्याग कर देना चाहिए। क्यों? कि वो पापी आदमी अपने आप को ही धोखा दे रहा है, वो हमारा क्या हित करेगा भाई, इसलिए लोग उससे दूर रहते हैं। तो वो जाल लेकर वन में जाता और जो है पक्षियों को पकड़ लेता। ऐसे करते करते उसका बहुत सा समय व्यतीत हो गया, उसका परिवार उसके साथ ही रहता था। क्या पता क्या ही है, उसकी बात यह कि कोई उसकी दूसरी वृत्ति नहीं थी, देव योग से यही एक वृत्ति थी, उससे ही अपना काम चलाता था, और दूसरी वृत्ति उसको अच्छी भी नहीं लगती। अरे जंगल में खूब फल फूल है, कंदमूल है और चीजें हैं, वो नहीं पाप करके ही खाना, ऐसा वो पापी। एक दिन जोर से जंगल में तूफान आया, बहुत जोर से आंधी आई, उस आंधी के अंदर सारे वृक्ष है इधर उधर गिरने पड़ने लगे हूं, आकाश के अंदर बदल छा गए, बिजलियां गड़गड़ाने लगी और इतनी जोर से बारिश हुई, इतनी जोर से बारिश हुई चारों तरफ कटी पर्यंत जली जल हो गया, सारे जगह जली जल हो जाने के कारण से अब वो जहां भी जाए तो पानी पानी। सर्दियों का समय था, गर्मी का भी समय नहीं, सर्दी के अंदर वो कांपने लगा। अब वो मार्ग भूल गया कि कौन से मार्ग से जाऊं, क्योंकि मार्ग तो सब इतने इतने पानी के अंदर सब डूब गए। बहुत से पशु पक्षी तो उस ठंड के अंदर हाहाकार के अंदर मर गए, सिंह है और हाथी है ये सब ऊपर पर्वतों में चले गए। वह इस प्रकार से अपना रास्ता देख रहा था, इतने में एक कबूतरी आई, उसके सामने आकर यूं पानी में गिरी। उसने देखा कि चलो एक तो खाने को मिला, उसने उसको लेकर अपने पिंजरे में रख लिया। पिंजरे में रख करके वो रवाना हुआ आगे। और उन वृक्षों को देखते 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 चलते चलते एक विशाल वृक्ष देखा, और जिसके पास में और भी वृक्ष थे, सब वृक्षों में बहुत ऊंचा वृक्ष, लंबी चौड़ी उसकी टहनियां, ऐसा उस वृक्ष को देखा। तब उसने विचार किया कि चलो अब यहीं विश्राम करें, और तो कहां जाए। रात में आकाश में बादल फट गए, तारे चमकने लगे, बड़ी जो है चीरती हुई ठंडी हवा चलने लगी। अब उसने देखा कि अब मैं कहां जाऊंगा रात्रि में। तब उसने उस वृक्ष को हाथ जोड़ते हुए कहा, हे वृक्ष, अब मैं तुम्हारी ही शरण लेता हूं। तब उसने वृक्ष के नीचे थोड़ा खड्डा खोद दिया, खड्डा खोद करके खड्डे के अंदर चला गया और वहां पर बैठ गया। वो उसी वृक्ष के ऊपर कबूतर बैठा हुआ था और वो कबूतर इस कबूतरी का ही पति था। पितामह भीष्म ने कहा कि मैंने परशुराम जी महाराज के मुख से सुना था, उन्होंने मुचकुंद ऋषि को बताया, मुचकुंद राजा को बताया कि राजन, जैसे तुम लोग अपनी पत्नी के लिए व्याकुल हो जाते हो कि सुबह की गई हुई है शाम तक नहीं आई, ऐसे वह कबूतर बड़ा पागलों के भांति अपनी कबूतरी के लिए विवल होने लगा। वो कहा कि ओहो, आज तो बड़ी भयंकर वर्षा हुई है, मेरी प्रियतमा जाने कहां चली गई, क्या कारण है, अभी तक वो आई नहीं है, अद्यापि न निवर्तते, कहीं इस झंझावात में तूफान में मेरी पत्नी का शरीर चला तो नहीं गया है, पत्नी के बिना भी कोई घर हो सकता है क्या, और यदि पत्नी घर में रहती है तो वहां उसके लिए नगर का नगर बसा हुआ है, पत्नी के बिना नगर भी जंगल मालूम देता है, मेरे पुत्र है, मेरे पौत्र है, मेरे पुत्र वधु आदि खूब है, लेकिन पत्नी के बिना मुझे घर सुना सुना और नीरस मालूम देता है। न गृहम गृहम इत्याहुर गृहिणी गृहम उच्यते, जब गृहिणी नहीं होती तो उसका नाम घर भी नहीं होता है, गृहिणी से हीन जो घर होता है वो जंगल के समान होता है। वो कितनी मधुर स्वर में बोलती थी, मेरा कितना ध्यान रखती थी, मेरे भोजन करने के बाद वो भोजन करती थी, मुझे स्नान कराकर वो स्नान कराती थी, मेरे उठने पर वो बैठ नहीं जाती थी, खड़ी हो जाती थी, पहले मुझे सुलाती उसके बाद वो सोती थी, मैं यदि खूब प्रसन्न हूं तो यही उसकी प्रसन्नता थी, मैं यदि दुखी हूं तो यही उसका दुख था, उसका अपना कोई अलग दुख नहीं था, कभी कभी मैं उसके ऊपर क्रोध भी करने लगता तो वो मुस्कुरा करके बड़े प्रेम से बोलकर मेरा क्रोध शांत कर देती थी। सच है इस संसार में पतिव्रता स्त्री का जीना ही जीना है, जो पति के सन्मुख अपनी बात रखती है, पति से क्रुद्ध हो जाती है, वो स्त्री आगे जाकर बहुत बड़े नरक को निमंत्रण देती है। ऐसी स्त्री जो कभी पति के सामने न बोले, वो स्त्री है जिस पुरुष को मिले वो संसार में धन्य हो जाता है। वो जानती थी कि मैं थका हुआ हूं, भूखा हूं, तो वो मेरे प्रति बहुत अनुराग रखती थी, मेरे प्रति उसका अत्यंत अनुराग मेरी भक्ति का कारण था। अरे किसी आदमी का घर यदि एक वृक्ष के नीचे भी है, लेकिन यदि पत्नी साथ में है तो कोई हर्जा नहीं है। और प्रासादोपि तयाहीन है, और बहुत बड़ा महल है और स्त्री नहीं है तो वो महल किसी काम का नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब के अंदर स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है। कहीं बाहर जाना होता है तो स्त्री का विश्वास आगे तक काम आता है। भार्या ही परमोही अर्थ है। मनुष्य की प्रधान संपत्ति तो उसकी पत्नी है। पति यदि बीमार हो जाता है तो सबसे बड़ी औषध पत्नी होती है, दूसरी दवाई बाद में काम करती है। नास्ति भार्या समूह बंधु, दुख में जितना पत्नी साथ देने वाली है उतना कोई साथ देने वाला नहीं है। इसलिए मैं अपनी पत्नी के बिना बड़ा दुखी हो रहा हूं। ऐसे वो कबूतर बोलने लगा। नीचे उसी वृक्ष के नीचे वो कबूतरी पिंजरे में थी, वो बोलने लगी। अतीव सौभाग्य, मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूं कि आज मेरे पति मेरी प्रशंसा करते हैं। जो स्त्री अपने पति के हृदय में स्थान न जमा सके वो स्त्री स्त्री कहलाने योग्य नहीं है। पति को संतुष्ट रखने के अलावा पत्नी का दूसरा कोई काम नहीं है। तुष्टे भर्तरी नारीणाम, यदि एक पति को संतुष्ट कर लिया तो सब देवताओं को संतुष्ट कर लिया। कबूतरी बोलती है कि अग्नि की साक्षी के अंदर पति और पत्नी दोनों प्रकार का संबंध स्वीकार होता है। वो अग्नि जब स्त्री पति के अनुकूल व्यवहार नहीं करती तो वही अग्नि दावाग्नि बन करके जैसे सारे वृक्ष को जला देती है, उसी प्रकार से उस स्त्री के सारे धर्म को जला देती है। और खूब करती है, व्रत भी करती है, उपवास भी करती है, तीर्थ भी जाती है, दान पुण्य भी करती है, लेकिन अपने व्यवहार से पति को प्रसन्न नहीं रखती, उसके सारे भस्म हो जाते हैं, जैसे दावा नल में भस्म हो जाए। वो कबूतरी बोलने लगी कि हे प्राणनाथ, मैं आपको कुछ निवेदन करना चाहती हूं। शरणागत संत्राता भवकांत विशेषता है, आप इस चंडाल की जो है चंडाल को आप अपने शरण में ले लीजिए, शरण में आया है इसकी रक्षा कीजिए। आप इसके धनुष बाण की तरफ, कटार की तरफ, जाल की तरफ और इसके कारनामों की तरफ मत देखिएगा। आप केवल इसीलिए कि बहुत भूखा है और जिस वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष पर मैं रहता हूं उस वृक्ष के नीचे आ गया है और ये बोल करके आया कि हे वृक्ष, मैं तुम्हारी शरण में हूं, अतएव अब आपको अपने तो चुक 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 करके खाते हैं। ये कापोती वृत्ति है। अपने घर में आया हुआ अतिथि है, अपने पुत्रवान संतानवान है, इसलिए अपने देह के ऊपर विचार न करके धर्म पर विचार कीजिएगा प्राणनाथ। जैसे भी हो इस बहेलिए का, इस शिकारी का सत्कार कीजिए, मेरे लिए संतप्त मत होइए। मैं तो जीवित हूं लेकिन मेरे हृदय में संताप है कि आपकी शरण में आया हुआ ये बेचारा भूखा है। ऐसे पिंजड़े में पड़ी हुई वो प्रार्थना करती है पतिदेव से। पत्नी के वचनों को सुनकर के एक तरफ तो व्याकुलता हुई, एक तरफ प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता इस बात की कि मेरी पत्नी जीवित है, और व्याकुल इस बात से हुआ वो कबूतर कि वो पिंजड़े में कैद है, शिकारी के यहां कैद है। लेकिन उसकी पत्नी ने जब ये शरणागत की रक्षा करने की इतनी ऊंची बात कही, तब उस कबूतर ने बहेलिया से कहा, शिकारी से कहा, स्वागतम, आपका इस वृक्ष के नीचे एक कबूतर के द्वारा बड़ा आत्मीयता से भरा स्वागत है, स्वीकार कीजिए। आप किस बात से दुखी है मुझे बताइए, मैं आपके दुख को दूर करूं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। आप मेरे यहां पधारे हैं इसलिए आप मेरे स्वयं के आप परिवार के सदस्य हैं। यदि शत्रु भी अपने यहां आ जाए, घर में आ जाए, तो उसका यथोचित आतिथ्य करना चाहिए, ये सनातन धर्म है। अरे शरणागत की रक्षा कौन कर सकता है, शिकारी वृक्ष करता है। वृक्ष के पास कोई कुल्हाड़ा लेकर आ जाए और कुल्हाड़ा लेकर इसको काटने लगे वृक्ष को, तो वृक्ष शिकारी को देखकर उस कुल्हाड़े को देखकर अपनी छाया समेटता नहीं है कि भाई ये यहां क्यों आ गया, ये क्यों आ गया यहां, समेट ऐसा नहीं करता। वो अपनी छाया देता है, वो काटता है तो वो काटता है। शरणागत की रक्षा करने पर पांच प्रकार का यज्ञ पूरा होता है। शिकारी कहने लगा, हे कबूतर, बड़ा पानी बरसा, कमर तक पानी पानी में आया हूं, सर्दी का मौसम है, ऐसा लगता है कि ये रात निकलेगी तब तक मेरे प्राण निकल जाएंगे, ठिठुर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा वृक्ष के नीचे जमीन खोद कर अंदर बैठ गया। अंदर मेरे जो है बहुत ठंडक हो रही है, मैं ज्यादा देर तक अब जीवित नहीं रह सकता हूं, कोई ऐसा उपाय करो कि जिससे मेरी ठंडक शांत हो जाए। तब कबूतर ने क्या किया कि उस वृक्ष के सूखे सूखे पत्ते थे वो टुक 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 डाल दिया, खूब सारे सूखे पत्ते डाल दिए। देखा कि अब आग कहां से लाऊं, तो ऊपर तो था ही वो कबूतर, ऊपर बैठ करके कबूतर ने चारों तरफ निगाह डाली। एक दूर जगह कोई लोहार था, वो रात्रि के समय में लोह गर्म कर रहा था, वो कबूतर वहां गया। वहां जाकर एक पत्ता लेकर उस पत्ते को अग्नि के साथ जोड़ दिया और जलता जलता पत्ता लेकर आया और उस पत्तों के अंदर वो डाल दिया, तो सब पत्ते गर्म हो गए, जलने लगे और उसको शांति मिली। बड़ा हर्षित हुआ, बड़ा हर्षित हुआ। मैता हर्षेण आविष्ट है, कहने लगे, हे कबूतर, प्राण बचा दिए, गर्मी मिल गई, नहीं तो मेरा खून जम गया था, और जब विशेष खून जम जाता है तो शरीर में चलता नहीं, तो मर जाता है आदमी। अब गर्मी से मेरा खून है वो सारे शरीर में फैलने लग गया। दत्तम, अब और तो सब कुछ हो गया, लेकिन मैं बहुत भूखा हूं कबूतर, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। दत्ताहार, कुछ देव तो खाने के लिए दो, मुझे भूख बहुत परेशान कर रही है। पक्षी ने कहा कि भाई, हे बहेलिया जी, कहां से लाऊं, मेरे पास कोई वैभव नहीं, मेरे पास कोई अन्न नहीं, हम तो ऋषि मुनियों का सा जीवन व्यतीत करते हैं, कबूतरी वृत्ति माने चुगलिया खा लिया बस, संग्रह नहीं करते हैं। देखो पुराने जमाने में ऐसे ऐसे संत भी थे हो कि रात्रि में सोए तो सब मटकों को उल्टा कर दे, मटका कोई पानी भी नहीं रखना यहां। दिन में भिक्षा लेकर आते और शाम को उसको पा लेते, और पालने के बाद जो भिक्षा बच जाती कहीं मालूम करते बस बच गई क्या भिक्षा, चलो बाहर डाल दो, गायों को दे दो और कोई दे दो। कोई खाने का भी संग्रह नहीं रखते, कपड़ा भी बस अपना है जितना ही पहनते, बाकी कपड़ा भी नहीं पहनते, कपड़े का भी संग्रह नहीं, क्योंकि वे लोग भगवान के ऊपर विश्वास तभी तो करते हैं। देखो भगवान हमको कैसे देते हैं, धान नहीं धीणो नहीं नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठे रामदास आन मिले सब थोक। सब चीज आती है, भगवान पर ज्यादा विश्वास होता है। संचयो नास्ति चास्माकम्, मुनि नाम इव भोजने, बड़े बड़े ऋषि मुनि महापुरुषों के समान भाई हमारे यहां तो कोई संचय तो है नहीं, और वैसे हम लोग खा लेते और तो कुछ है नहीं। इतना कबूतर ने कह तो दिया, लेकिन कबूतर देख रहा है कि उसका मुंह बड़ा उदास हो गया, अच्छी बात है यूं बैठा यूं मुंह उतारा हुआ, तो कबूतर का भी मुंह उदास हो गया। सोचने लगा किं कर्तव्यम मया, क्या करूं मैं अब, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे कई देर तक विचार किया और सोचा कि कोई साधन नहीं मिल रहा है, तो उसी समय में वो कबूतर वहां ऊपर से आया वृक्ष से, और जो आग तो जगी हुई थी उस अग्नि के तीन परिक्रमा की उसने, अग्नि की परिक्रमा की कि हे अग्नि देवता, जो आप मेरे अंदर हो वही आप इसके अंदर हो, और वही आप बाहर विराजमान हो, इसलिए मैं आपके अंदर आकर के और इसकी अग्नि को संतुष्ट करूंगा। ऐसा विचार करके वो कबूतर उस आग में डूब गया, और इतने में ही वो कबूतर वहां लटपट होकर के मर गया। उसके मरते ही बहेड़िए को बड़ा वैराग्य हुआ, ओहो ये क्या किया मैंने, उसका मन बड़ा चिंतित हुआ, रोने लग गया, ये क्या हुआ, मैंने अपनी भूख क्यों बताई कबूतर को, मुझे ये क्या पता था कि शरणागत की रक्षा एक कबूतर भी कर सकता है क्या। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए, लेकिन आज जैसा पाप मैंने जीवन में कभी नहीं किया। जिसके नीचे आकर बैठा उसी के ऊपर बैठा हुआ एक जो कबूतर आकर मेरे लिए मेरी भूख मिटाने के लिए चला गया। अब वो कबूतर जब आग में कूद पड़ा तो अंदर ही अंदर दुखी हुआ, किम ईदृशम संशेन, मेरे जैसा क्रूर संसार में कौन हो सकता है, मुझ पर मुझे ज्ञातियों ने माने मेरे सगे संबंधियों ने सब ने मेरा त्याग कर अविश्वास कर त्याग दिया है, बहुत अच्छा किया, मैं किसी के साथ विश्वास के योग्य नहीं रहा, कहां मैं पशु पक्षियों को मारने लगा, कितना क्रूर हूं। दत्ते स्वमांसम दहता कपोते न महात्मना, मुझे तो इसको अग्नि में कूदते हुए को बचाना चाहिए था, ये मैंने अच्छा नहीं किया, अब मैं इस पाप को जीवन में कभी नहीं करूंगा, कभी शिकार नहीं करूंगा, भूखे मरूं तो मरूं, मेरे स्त्री मेरे पुत्र मरे तो मरे, लेकिन अब ऐसा पाप नहीं करूंगा, संपूर्ण भोगों से वंचित कर दूंगा, मुझे भूख और प्यास से तड़पते तड़पते मरना चाहिए, ऐसा गति, ऐसा परमा गति, ये मेरे लिए परम गति होगी। कबूतर ने अपना शरीर दे दिया एक मामूली से शिकारी के लिए, इसने अपना धर्म निभाया, क्या मैं धर्म नहीं निभा सकता? इतना कहकर के वो वहां से रवाना हुआ। रवाना होते होते उसने रोते मन से, देखो जाल भी फेंक दिया, धनुष बाण भी फेंक दिए, कटार भी फेंक दी, सब फेंक दिया, और वो पिंजरा था, उस पिंजरे में से उस कबूतरी को निकालते समय फूट फूट के रोने लगा कि कबूतरी तेरा पति मेरे कारण से इस आग के अंदर जल भुन गया। कबूतरी बाहर आई, अपने पति को जलते हुए देखा तो बड़ा वियोग हुआ उसको। नाहन्ते विप्रियंकांत कदाचित भी संस्मरे, कभी भी आपने मुझे कठोर वाणी से कुछ कहा मुझे याद नहीं आती है। इस संसार में चाहे कितने स्त्री के पुत्र हो जाए, पति के बिना उसका कोई नहीं होता। पति विहीन तपस्विनी स्त्री भी शोचनीय होती है। मधुर वचनों से आपने कितना मेरा सम्मान रखा, आकाश में उड़ते थे, साथ में चलते थे, कंदराओं में जाते थे, देवोद्यानों में जाते थे और अनेक वृक्षों पर घूमते थे, आपने मुझे सदाई साथ दिया है। इस संसार में जो पति दे सकता है वो न पिता दे सकता है न भाई दे सकता है। मितम ददाति ही पिता, पिता भी थोड़ी चीज देता है, लेकिन अमितस्य ही दातारम भर्तारम का न पूजयेत। और जो सब कुछ देने वाला होता है ऐसे पति का क्यों नहीं आदर किया जाए। ऐसा वो विलाप करती रही और कभी विलाप करते करते उसी अग्नि के अंदर वो भी छटपटा करके मर गई। ये सब शिकारी ने अपने सामने देखा और उसी समय में अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित एक विमान आया। भगवान के पार्षद उस विमान को लेकर आए। शिकारी वहां फाड़े फाड़े देख रहा है, कबूतर और कबूतरी दोनों दिव्य रूप धारण किए हुए। उन दिव्यात्माओं को भगवान के पार्षदों ने बड़े नम्रता से हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ करके कहा आप जैसे शरणागत वत्सल संसार में कोई दूसरे देखने में नहीं आए, पधारिए। आप इस विमान में बैठिए, देखो ये करोड़ों करोड़ों विमान में बैठे हुए देवता लोग भी आप इस विमान में बैठेंगे तो आपका दर्शन करेंगे, अतएव आप इस विमान में बैठ करके चले। पितामह भीष्म ने कहा, बहेड़िया ने देखा कि ये क्या मैं देख रहा हूं, सत्य देख रहा हूं। अब बहेड़िया ने देखा कि न तो मैं शरणागत की रक्षा कर सकता हूं, न मैं मंत्र जानता हूं, न तंत्र जानता हूं, न योग जानता हूं, न तपस्या जानता हूं, कुछ नहीं जानता हूं। मैं तो एक ही काम हूं कि जो मैंने पाप किया अब जीवन में कभी पाप नहीं करूंगा। इतना कहकर के वो रोता रोता अपने घर भी नहीं गया और जंगल के अंदर किसी रास्ते से चल पड़ा। आगे चलकर उसको बड़ी जोर से प्यास लगी और उसी समय सरोवर दिखाई दिया, पर सरोवर के वहां जाकर उसने जल नहीं पिया। पिपासार्थोपि तद्दृष्ट्वा तृप्तस्यां नात्र संशय है, उपवास कृशोत्यर्थम सतु पार्थिव लुब्धक है। वो किसी प्रकार से जल उसने स्वीकार नहीं किया और उसी पशु पक्षियों से भरे हुए जंगल के अंदर वो रहने लगा और रह करके वहां बस जो उसको स्मरण में आया भगवान का नाम वगैरह वैसा ही लेता रहा। और अंत में भाई वो जो आग थी ना, वो आग साफ जो है जंगल के अंदर फैल गई। वो वृक्ष के नीचे जो आग थी करते करते फैल गई, इधर दावानल भी फैल गया, सब वृक्ष सब जंगल वो नष्ट हो गया और उसी के अंदर वो भी नष्ट हो गया, बहेलिया भी नष्ट हो गया, जल गया। और उस प्रकार से उस बहेलिए के सामने भी विमान आया। उस शिकारी ने विमान वालों से पूछा कि आप लोग कौन हो? कहने लगे हम भगवान के यहाँ पार्षद हैं, कबूतर कबूतरी को लेने वाले आए थे, उन कबूतर कबूतरी ने जाकर देवताओं से भगवान से सबसे प्रार्थना की कि महाराज उसी जंगल में उसने अब पाप न करने का निश्चय किया है, ये कोई उसकी कम आराधना है क्या शिकारी की? तब जो है उन्होंने हमको आदेश दिया है कि भाई आप उसको भी लेकर के आओ, तो हम आपको लेने के लिए आए हैं। शिकारी ने कहा कि अरे पाप नहीं करेंगे इतने मात्र से, देखो संसार में कितना ऊंचा स्थान मिल जाता है, देवताओं में ऊंचा स्थान मिल जाता है। परशुराम जी ने कहा मुचकुंद कभी कोई जीवन में पाप मत करना, न निष्कृतिर भवेत तस्य यो हन्यात शरणागतम, शरणागत का कभी त्याग मत करना हो, जाओ तुम्हारे पास जो शरण में आया उसको प्रेम से शरण में रखो, दुर्गति की प्राप्ति नहीं होगी। और कभी भी कोई आदमी अपने पाप का प्रायश्चित करे उसको दंड मत देना, भगवान भी वहां पर दंड नहीं दिया करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि कोई आदमी यदि अज्ञानता से कोई पाप की गलती हो जाए अज्ञान पूर्वक तो क्या करना चाहिए? तो कहा कि देखो एक जन्मेजय नाम का राजा था, उसके द्वारा अनजान में ब्राह्मणों का तिरस्कार हो गया। तिरस्कार क्या हो गया? ब्रह्म हत्या लग गई, उसको पता था नहीं ब्राह्मण मर गया, उसको अपना राज्य भी निकाल दिया, राज्य से निकाल दिया, तिरस्कृत हो गया, बहुत बड़ा उसके द्वारा पाप हुआ। फिर वो जंगल में रहने लगा, मन में बड़ी घृणा हुई। जंगल में उनको जो है एक ऋषि मिले, उनका नाम था इंद्रोत। इंद्रोत के शरण में गए, उन्होंने पहले उसको खूब फटकारा, कर्म करने से पहले तुमको ये मालूम नहीं रहता है कि इसका फल कहां जाकर के टिकेगा, बाण चलाया तो तुमको देखना चाहिए कि किधर ये बाण जाने वाला है, कोई अकस्मात बाण के बीच में आ गया तो वो मरेगा, तो मरने वाला कौन है? बाण का प्रयोग आत्मायों के अलावा कहीं करना नहीं चाहिए, शस्त्र का प्रयोग, मारक शस्त्रों का प्रयोग। ऐसे से खूब फटकारा उनका, जितना आप फटकारो उतना ही कम है महाराज। गर्यम भगवान गर्यते, आप निंदनीय की निंदा कर रहे हो, उपालंब के योग्य उसी को उपालंब दे रहे हो, ठीक कर रहे हो प्रभु, बहुत अच्छा कर रहे हो। ऐसे करके जो है कहा कि मैं तो आपकी शरण में आ गया। तब उन्होंने यज्ञ वगैरह करवाया और यज्ञ करवा करके उनका पिंड छुड़वाया, फिर वे वापिस अपने राजधानी में आ गए। अनजान में जो पाप होता है उसका प्रायश्चित होता है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि महाराज कोई संसार में मरा हुआ जीवा ऐसा कोई पता है क्या? कोई मरा हुआ भी जिया है क्या? पितामह भीष्म कहते हैं कि बिल्कुल ठीक बात है, मरा हुआ जिया है, एक कथा आती है। और कैसी कथा है कि बिल्कुल सत्य घटना है। कौन बोलते हैं? पितामह भीष्म बोलते हैं। भीष्म की वाणी झूठी थोड़ी होगी। शृणुपार्थ यथा वृत्तम, जैसा हुआ वो घटना सुनाता हूं। क्या महाराज? कि देखो किसी नगर में एक ब्राह्मण का लड़का मर गया, ज्यादा उम्र नहीं थी, बिल्कुल छोटा भी नहीं था, 13-14 वर्ष का लड़का था, बड़ा सुंदर लड़का था, मर गया। सब लोग हाय हाय करने लगे, रोने लगे, मसाणों में ले गए, खूब बिलाप करने लगे। अब उसका अग्नि संस्कार करें नहीं, उस उसको लेकर के बैठे बैठे रोए सब बैठ कर तो वहां गीद आया। गीद आकर के कहने लगा कि अरे आप लोग रोते हो मरने वाले के लिए, मशान में आकर के, मशान में आकर के तो आपको शिक्षा लेनी चाहिए कि सब लोग यही आते हैं और हम लोगों को भी यही आना पड़ेगा। यहां तो आकर मनुष्य को ज्ञान लेना चाहिए, आप रोते हो, अब आप इसको यहीं छोड़ जाओ, रोने से कोई जीवित तो होने वाला नहीं और आप अपने अपने घर चले जाओ। मशान के यहां आकर रोना ये भगवान के विधान का भयंकर अपराध होता है, अब आप इसको छोड़ जाओ। वो छोड़ करके रवाना होने लगे तो वहीं पर जम्बूक आया। जम्बूक, जम्बूक कहते हैं गीदड़ को, श्यालियो, श्यालिया आया, जम्बूक आया, अरे रे क्या जा रहे हो, देखो ये कैसे मनुष्य निष्ठुर हैं, कितने निर्दयी हैं, तुम्हारा लड़का जीवित है और तुम बताओ जा रहे हो ऐसे अपने सुकोमल बच्चे को, जिससे तुम्हारा वंश चलने वाला है, जो तुम्हारे वंश की रक्षा करने वाला है, उसके प्रति तुम्हारा इतना भी प्रेम नहीं, ऐसे जा रहे हो। अरे पशु पक्षी भी इतना प्रेम करते हैं अपने बच्चों से, गाय का स्नेह नहीं देखते, गाय अपने बछड़े को अपने से अलग नहीं करती, चाटती रहती है, चिपकाए रखती है, तुम लोग मनुष्य होकर, अरे गाय का बछड़ा कौन सा यज्ञ करेगा, कौन सा श्राद्ध करेगा, आपके मरने के बाद वो गाय का बछड़ा, गाय के मरने के बाद कोई यज्ञ दान पुण्य करता है क्या? ये तो बेचारा आपके मरने के बाद दान पुण्य करेगा, मरने के बाद भी आपकी सेवा करेगा, और बताओ आप बच्चे को छोड़ के जा रहे हो। इमम कुलकरम पुत्रम त्यक्त्वा कनु गमिष्यते, ऐसा तुम्हारा कुल को पैदा करने वाला, कुल को चलाने वाला छोड़ के जा रहे हो। जो शरीर से क्षीण होता है और कोई अर्थ से क्षीण होता है वो भी सीधा मशान में नहीं लाया जाता है। शरीर से क्षीण हुआ है, मशान में थोड़ी ले जाएंगे उसको, भी जी रहा है, दवाई देंगे, क्या पता ठीक हो जाए। या कोई दरिद्री हो गया, खूब बड़ा पैसा था, दरिद्री हो गया, आप खाने के लिए भी नहीं, तो मशान में तो नहीं लाते, आप इसको मशान में लिया है, जरा सी भी शर्म नहीं आई आपको, जाओ वापिस लौटो और ले जाओ अपने बच्चे को। अब वो वापिस गए कोई गीद मिला, गीद कहता महामूर्ख हो तुम लोग, कहां जा रहे हो, मशान में जा रहे हो वापिस उस बच्चे। अरे मशान में लाने के बाद कोई किसी को ले जाता है क्या, तुम अकल से तो सोचो, श्याले की बात में आ गए तुम। श्याला कभी जो है सत्य बोलता है, देखो तो सरी ये सांस नहीं आ रहा है इसके, इसके इंद्रियां ही काम नहीं कर रही, इसके नाड़ियां काम नहीं करती हैं, इसका नाम लेने पर ये बोलता तक नहीं है, और बताओ आप इसको जो है ले जाने जा रहे हो। ये जीवित था तब तक आपका था, मरने के बाद अब आपका नहीं रहा, ये श्मशान का हो गया, ये श्मशान की संपत्ति आप नहीं ले जा सकते। आपका कर्तव्य क्या है, आपका कर्तव्य इसका पालन पोषण करने का था, और आपका कर्तव्य मरने के बाद इसको श्मशान में लाने का था। आप इतने मोहित हो कि मरे हुए पुत्र को घर में ले जाओगे, इतना मोह है तुम्हारे अंदर, राम राम राम, शर्म आनी चाहिए। मनुष्य के अंदर विवेक होता है, विवेक की दृष्टि से देखो, शोक करते हो तुम, ऐसा शोक नहीं करना चाहिए। तो वो वापिस जाने लगे। श्यालिया कहने लगा कि आप गीत के वचनों में आ गए, ये गीत तो लोभी है, ये गीत देखता है कि तुम गए नहीं, पीछे से टांच मार मार करके मैं खाया नहीं, वो अपने लोभ से बात करता है। अरे तुम्हारे ये ऐसे कोमल अंग वाले बच्चे इतने अप्रिय लगते हैं आपको, तुम पुत्र के बनावटी वियोग के अंदर ऐसे डूब रहे हो, बनावटी वियोग है, पुत्र मरा ही नहीं, और वियोग की बातें कर तुम पुत्र का त्याग करके अनर्थ कर रहे हो। कहां जाओगे? पितृणाम वंश कर्तारम वने त्यक्त्वा क्वे यास्यथ। कहां जाओगे? घर में जाओगे। और किसी ने कह दिया कि आपका बेटा तो जीवित है, तब आपकी क्या दशा होगी? इसलिए आप स्वयं ही यहां से ले जाओ। अच्छा है अभी सूर्य भगवान अस्ताचल की तरफ नहीं गए, ततो निश्चिते वा पुत्रम अस्ताचल की तरफ चले जाएंगे, उसके बाद तो आप ले जा ही नहीं सकते हो, वापिस ले जाओ। गीत कहने लगा, ओ मूर्खो क्या करते हो, इसका कपड़ा संभालते हो और ये करते हो, हजार वर्ष हो गए मुझे यहां रहते हुए, मालूम है आज तक कोई व्यक्ति यहां आकर के वापिस नहीं ले जाया गया, उसको किसी ने नहीं कहा कि जीवित है। ये श्यालिया तो अपने स्वार्थ के लिए बोलता है। कि श्यालिया को क्या स्वार्थ है? कि इसको ये स्वार्थ है कि यहां तो हम कई जने हैं खाने वाले, और जब आप इसको ले जाओगे तब हम लोग तो मशान छोड़ते नहीं, इसको कोई शर्म है नहीं श्यालिया को। वो रास्ते में जाकर अकेला जाकर इसको खाना चाहता है तो मुर्दा ही, तो आप इसको यहीं छोड़ दो बाबा, मशान में लाई हुई चीज को मत छेड़ो, इसको निरर्थको यम स्नेह। आपके अंदर तो मोह पैदा हो गया, अरे मोह करो कम से कम सार्थक मोह तो करो। चक्षुर्भ्याम नच कर्णाभ्याम संशिणोति समीक्षते। देखो इसके नाक से कोई सांस आ रहा है क्या? आंख से कुछ देखता है क्या? कान से कुछ सुनता है क्या? देखो तो सही, पानी डाल के देखो, कान में पानी डाल के देखो, नाक में पानी डाल के देखो, मेरी बातें आपको ऐसे कैसे निष्ठुर मालूम दे रही हैं? आप इसके शरीर में कुछ घाव करके देखो, इसको कुछ पता नहीं चलेगा। प्रज्ञा विज्ञान युक्तेन, मैं बड़े दिव्य ज्ञान से आपको देख कह रहा हूं और आप विचार नहीं करते हो, चले जाओ यहां से। फिर वो रवाना हुए। श्यालिया कहता है, वाह वाह वाह, दुनिया में आप जैसा मूर्ख मैंने नहीं देखा, स्वर्ण से विभूषित जैसा तुम्हारा स्वर्ण की कांति वाला बच्चा, कितना सुंदर गौर मुख, इसके ऊपर सोने का आभूषण पहनाओ और इसके शरीर को देखो तो आभूषण है पता ही नहीं चलेगा, इतना इसका सुंदर शरीर। अरे गीत के वाक्य में फंस गए आप लोग। वो कह रहा है कि तुम मोह करते हो, अरे इस बच्चे में तो मोह करना चाहिए क्योंकि जीवित है, ये शोक नहीं करना चाहिए, बात अच्छी है। हम भी कहते हैं शोक नहीं करना चाहिए, मरे तब ना, लेकिन तुम जीते जी को मारना चाहते हो, शोक करो तुम अपने लिए, रो अपने लिए। तुम संसार में बहुत जगह ऐसा भ्रम हुआ कि मर गया, लेकिन मरा नहीं, जीवित रहा। जैसे श्वेत था, श्वेत नाम का राजा, लोगों ने कह दिया मर गया, देखो कोई नहीं मरा। सर्प और बिच्छू से कई लोग मर जाते हैं, फिर उनको गोबर में डालते करते हैं, वो झारा जहर गोबर में निकल आता है, वो आदमी बच जाता है। जो बिल्कुल मर जाता है उसकी बात अलग है, वो भी कई लोग जीवित हो गए किन्हीं किन्हीं की कृपा से। आप ये क्या करते हो? ये जीवित है इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। तब वो जाकर वहां जाकर बैठ ही गए उसके पास, बच्चे के पास बैठ गए और रोने लगे। तो गीत कहने लगा, रो और रो, तुम्हारे रोने की आवाज सुनने वाला है नहीं और यमराज तक तुम्हारा रोना पहुंचेगा नहीं। तुम श्यालिया के लिए रो रहे हो तो पता नहीं, मेरे लिए रो रहे हो तो पता नहीं, इसके लिए रो रहे हो तो पता नहीं, तुम्हारे लिए रो रहे हो तो पता नहीं। मृत्यु के वश में बड़े बड़े महापुरुष आ गए, मृत्यु भी महापुरुषों के शरीर को नहीं छोड़ी, क्या वो वापिस जीवित हुए? नहीं हुए। इस मशान में क्या महापुरुष नहीं आते हैं? बड़े बड़े योगी लोग नहीं आते हैं? क्या हो गया एक 15 वर्ष का बच्चा मर गया? तो बहुतों के मरते हैं। एक भगवान शंकर अथवा ब्रह्मा जी अथवा विष्णु, ये कोई जीवा ने तो जिला दे, ऐसी तपस्या तुम्हारे है नहीं, ऐसी तपस्या होती तो तुम ये मरता ही क्यों? ऐसी तपस्या न तुम्हारे, ऐसी तपस्या न इस बच्चे की है, बाकी आप इन त्रिदेवों के अलावा, तीनों देवताओं के अलावा किसी के सामने रो कुछ नहीं होगा, न आंख से देखता, न सुनता है, न बोलता है, न तुम्हारे चेष्टाओं का इस पर प्रभाव होता है, फिर भी आप जीवित समझते हो, क्या करें। तब वो फिर वापस लौटने लगे तो शियालनी ने कहा कि देखो आप हम दोनों के आपस के बात को विचार करो, मैं जीने की बात कहता हूं, वो मरने की बात कहता है, आपके अंदर आशा का संचार तो मेरे वाक्यों से होता है ना, उसके वाक्यों से तो आप लौटते हो घर की तरफ ना, क्योंकि वो आपको निराश करता है गीत, मैं आपको आशावान बनाता हूं कि जीवित है। धिक्कार है आप लोगों को, आप आशावादी जीवन में नहीं बन रहे हो, निराशावादी में, निराशावादिता में जा रहे हो। संसार में सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये चलता ही रहता है। बताओ कोई ऐसा हुआ है क्या? कैसा सुंदर बच्चा, देखो मैं अपने मन की दृष्टि से देख रहा हूं, इसके सांस चल रहे हैं, ये बोलेगा। अच्छा नहीं बोले तो मैं भी यही हूं और तुम भी यही रहो ना, जाते क्यों? नहीं जिएगा तब हमको उपालम्ब दे देना, लेकिन अभी आप इतना ऐसा क्यों करते हो? पितामह भीष्म कहने लगे, युधिष्ठिर महाराज ऐसे दोनों एक दूसरे के जो है धर्म विरुद्ध बात कहने लगे, उसके धर्म के विरुद्ध वो बोलता है और उसके धर्म के विरुद्ध वो बोलता है, ऐसे करते करते उन दोनों को बिचारों को बीच में लटका दिया गीद ने और शियालिया ने। गीत कहता है कि देखो हम लोग तो मरे हुए प्राणी को बहुत दूर ऊंचे आकाश में होता है ना, उससे पहचान लेते हैं कि आदमी मरा है जिया है। शियालिया होता है जो उसकी छाती पर बैठ करके भी हरदम डरता रहता है कहीं जीवित तो नहीं है, इसलिए शियालिए की बात में मत आओ, इसका हृदय संशयशील है। और मेरी दृष्टि से देखो कि गीत की दृष्टि बड़ी विचित्र होती है। जम्बूक ने कहा कि ठहरो ठहरो ठहरो, सूर्य भगवान सबके साक्षी हैं, दो का जब कलह होता है तो तीसरा कोई मध्यस्थ होता है, गीत की वाणी के अंदर मत फंसो। इस प्रकार से वो दोनों अपने अब वहां डेरा लगा लिया, और गीत और वो गीदड़ दोनों अपने अपने स्वार्थ के अंदर रचे पचे थे। गीद ने देखा कि ये यहां रह जाएगा तो मैं खाऊंगा, और शियालिया देखता है कि ये यहां से ले जाएंगे तो रास्ते में मेरे को भोजन मिल जाएगा। वो बेचारे शोक संविग्न बैठे रहे, और बैठे बैठे उन्होंने क्या, हे भगवान, हे प्राणनाथ, हे श्मशान की राख को लगाने वाले भगवान शंकर, इस श्मशान में तो आपका राज्य है, आपका राज्य है प्रभु, आप निर्णय दो कि बच्चा जीवित है कि मरा हुआ है। प्रभु हम आपके निर्णय को मानेंगे, न गीत की बात मानेंगे और न श्याली की बात मानेंगे, दोनों की विरुद्ध बातें हैं और दोनों की उचित बातें, दोनों ही अपनी अपनी जगह उचित ढंग से बोलते हैं, हमको कुछ पता नहीं है। आर्थ भाव से जो रोना बच्चे के लिए हो रहा था वो रोना एकदम बदल करके भगवान के लिए करी कर दिया, उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा, वरदोस्मि, हे भक्तों मैं तुम्हारे लिए वरदान देने के लिए आया हूं, क्योंकि तुमने अपने पुत्र के प्रति जो रोना था वो रोना हटाकर आपने मेरे लिए रोना किया है, मेरे दर्शन के लिए रोना किया है, मैं खुश हो गया हूं। बोलिए अब बताओ क्या चाहते हो तुम? तब उन्होंने कहा, महाराज हमारे वंश में एक पुत्र हुआ है और वो ही काल कवली त्रिदी हो जाएगा तो हमारा वंश नहीं चलेगा। अच्छा अच्छा तो ठीक है, तुम्हारा ये लड़का होगा, 100 बरस तक इसके पास मौत नहीं आएगी। इतना उन्होंने वरदान दिया, और इधर गीदड़ और वो दोनों भी आए कि महाराज हमारे में कोई गलती थी क्या? गीद ने कहा, महाराज हमारे भी कोई गलती थी क्या? हमारे ऊपर नाराज मत होना, इनके रोने से आप प्रसन्न हो गए तो महाराज हमारी बातों में कोई गलती तो नहीं थी। भगवान शंकर ने कहा देखो तुम दोनों ने सही बात कही, लेकिन तुम्हारे अंदर स्वार्थ था, भूखा स्वार्थ था, तो जाओ हम तुम दोनों को भी वरदान देते हैं कि आज के बाद तुमको भी भूख नहीं लगेगी, इसलिए स्वार्थ की बात भी तुम जो है छोड़ दोगे, फिर स्वार्थ की बात नहीं करोगे। पितामह भीष्म को कहा तो पितामह भीष्म इस बात युधिष्ठिर महाराज को ये बात बताई तो युधिष्ठिर महाराज बड़े आश्चर्य में डूब गए कि देखो महाराज ये संसार भगवान के लिए यदि रोना चालू कर दे तो इसका रोना कितना सार्थक है, और मरे हुए प्राणी के लिए रोता है इसका रोना कोई काम नहीं आता। अब दूसरा प्रश्न आगे चलेगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नारायण
नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्यामवर रामचंद्र की
जय
मोर मुकुटवंशी वाली
जय
अनंत कोटि सर्व संत
महात्मा की जय
अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज की
जय
भक्त वत्सल भगवान की आनंद कंद भगवान की जय।